दसवां स्कंध दूसरा अध्याय देवताओं द्वारा गर्भस्थ कृष्ण की स्तुति श्लोक संख्या 4 और 5। एकेतम अनुरुंधाना ज्ञातयः पर्युपासते हतेषु षत्सु बालेषु देवक्या अनुग्रासेनिना देवक्या औग्रसेनिना एकेतम अनुरुंधाना ज्ञातयः पर्युपासते हतेषु षत्सु बालेषु देवक्या औग्रसेनिना। माता जी यह पर्युपासते हतेषु षट्सु बालेषु देवक्या औग्रसेनिना। पांचवा श्लोक। सप्तमो वैष्णवं धाम यमनन्तं प्रचक्षते गर्भो बभूव देवक्या हर्षशोक विवर्धनः। सप्तमो वैष्णवं धाम यमनन्तं प्रचक्षते गर्भो बभूव देवक्या हर्षशोक विवर्धनः। सप्तमो वैष्णवं धाम यमनन्तं प्रचक्षते गर्भो बभूव देवक्या हर्षशोक विवर्धनः। प्रचक्षते अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। किंतु उनके कुछ संबंधी कंस के इशारों पर चलने लगे और उसकी नौकरी करने लगे। जब उग्रसेन का पुत्र कंस देवकी के 6 पुत्रों का वध कर चुका, तो देवकी के गर्भ में कृष्ण का स्वांश प्रविष्ट हुआ, जिससे उसमें कभी सुख की तो कभी दुख की वृद्धि हुई। यह स्वांश महान मुनियों द्वारा अनंत नाम से जाना जाता है और कृष्ण के द्वितीय चतुर्व्यूह से संबंधित है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरुः श्रीयुत पदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नम ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य, कुछ प्रमुख भक्तगण यथा अक्रूर कंस के साथ उसकी तुष्टि के लिए रहते रहे। ऐसा उन्होंने कई उद्देश्यों से किया। उन सबों को आशा थी कि कंस द्वारा देवकी के अन्य पुत्रों के वध के पश्चात 8वें पुत्र के रूप में भगवान प्रकट होंगे, अतः वे उत्सुकता पूर्वक उनके प्राकट्य की प्रतीक्षा करने लगे। कंस के साथ रहने से वे भगवान को जन्म लेते तथा बाल लीलाएं करते देख सकेंगे और बाद में अक्रूर कृष्ण तथा बलराम को वृंदावन से मथुरा ले जाने के लिए जाएंगे। पर्युपासते शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सूचित करता है कि कुछ भक्त कंस के पास इसीलिए रुकना चाहते थे कि वे भगवान की इन सब लीलाओं को देख सकें। कंस ने जिन 6 बालकों का वध किया था, वे पूर्व जन्म में मरीचि के पुत्र थे, किंतु एक ब्राह्मण के शापवश उन्हें हिरण्यकशिपु के नातियों के रूप में जन्म लेना पड़ा। कंस ने कालनेमी के रूप में जन्म लिया था और अब वह अपने ही पुत्रों को मारने के लिए विवश था। यही वह रहस्यपूर्ण बात है। ज्यों ही देवकी के पुत्र मारे जाते वे अपने मूल स्थान लौट जाते। भक्तगण इसे भी देखना चाहते थे। सामान्यतया कोई भी व्यक्ति अपने भांजों को नहीं मारता, किंतु कंस इतना क्रूर था कि बिना किसी झिझक के ऐसा करता था। अनंत या संकर्षण द्वितीय चतुर्व्यूह से संबंधित है। यह अनुभवी टीकाकारों का मत है। हरे कृष्णा। तो बलराम जयंती के दिवस पर भगवान श्री बलराम के प्राकट्य के बारे में कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। बलराम जी भगवान श्री कृष्ण के प्रथम विस्तार हैं, श्री कृष्ण से अभिन्न हैं, श्री कृष्ण के सहायक हैं, कृष्ण की लीलाओं में श्री कृष्ण के सेवक हैं, सदैव दास्य रूप में दास्य भाव में सेवा करते हैं। वैसे बलराम जी की विशेषता है कि वो पांचों रसों में भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं, फिर भी उनमें दास्य भाव ये प्रमुख है, क्योंकि ये एक सेवा भाव है। जैसा कि सर्वविदित है, माता देवकी के गर्भ में 6 बच्चों का जन्म हुआ एक के बाद एक, और कंस इन 6 बच्चों का वध करता गया एक के बाद एक। 7वीं बार जब माता देवकी गर्भवती हुई तो उस समय बलराम जी उनके गर्भ में प्रकट हुए, उनका अंश शेष या संकर्षण। और 8वें पुत्र देवकी माता के गर्भ में थे स्वयं श्री कृष्ण। यह सुखदेव गोस्वामी बतला रहे हैं कि कंस ने अत्याचार करना शुरू कर दिया था यदुकुल के सदस्यों के ऊपर, बल्कि सबके ऊपर अत्याचार करना प्रारंभ कर ही दिया था कंस ने, क्योंकि उसका साहस इस बात से बढ़ गया था कि जरासंध ये उनके रिश्तेदार थे। वैसे कंस ने जरासंध के 2 पुत्रियों से विवाह कर लिया था, तो जरासंध का साथ तो था ही, और साथ साथ और कई असुर थे जैसे पूतना, बक, त्रिणावर्त, चाणूर, मुष्टिक, अरिष्ट इत्यादि। ये सब कंस के घनिष्ठ मित्र थे। इन सब असुरों का साथ पाकर कंस का हौसला और साहस बढ़ गया था। वैसे तो असुरी वृत्ति का व्यक्ति था ही कंस, और जब ये और ताकत मिल गई तो कंस ने सबके ऊपर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। यहां तक कि जो यदुकुल के राजकुमार आदि थे वो भी डर के मारे इधर उधर भाग गए, कोई पंचाल देश में तो कोई इधर तो कोई उधर, कोई विदर्भ में, ऐसे अलग अलग जगहों में सभी लोग बिखर गए। परंतु यहां इन श्लोकों में बताया जा रहा है कि कोई ऐसे लोग थे यदुवंशी जो कि कंस के साथ ही रहे, कंस को छोड़कर नहीं गए, और उनमें से प्रमुख थे भगवान कृष्ण के भक्त अक्रूर। वैसे ये जो भी यदुवंश में जन्म हुए थे ये सब देव वर्ग के हैं, देवलोक से प्रकट हुए थे। जब देवतागण क्षीर सागर के तट पे गए थे, श्री कृष्ण या क्षीरोदक्षाय विष्णु के चरण कमलों में प्रार्थना करने के लिए कि आप शीघ्र प्रकट हो जाइए और यहाँ पाप का बोझ बहुत बढ़ चुका है और इसको घटाने के लिए आपको ही अवतीर्ण होना होगा, तो भगवान ने कहा था तथास्तु, मैं शीघ्र प्रकट हो जाऊंगा, परंतु आप सबको भी यदुकुल में प्रकट होना होगा। इसलिए देवलोक से अनेक देवता और देवियां आदि प्रकट हुए थे, भोज, वृष्णी, अंधक इत्यादि इन सब कुलों में। तो ये सब भगवान के भक्त ही थे, परंतु ऐसे भी देखा जाता है कि असुरों के द्वारा भक्तों के ऊपर अनेक प्रकार के अत्याचार और अन्याय होते रहे हैं इतिहास में। तो इस बार भी कंस ऐसे करते आया, परंतु अक्रूर जैसे थोड़े भक्त वहां उनके साथ में रहे। तो सवाल ये होता उठता है कि ये भी सब कंस का साथ छोड़ के इधर उधर क्यों नहीं चले गए, जबकि वो जानते थे कि कंस इतना बड़ा असुर है, तो कंस का साथ उन्होंने क्यों नहीं छोड़ा, जैसे कि अन्य यदुवंशी इधर उधर गए थे। अक्रूर और अन्य यदुवंशी क्यों नहीं ऐसे ही चले गए? तो यहां श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बतला रहे हैं इसका कारण। वो कहते हैं कि अक्रूर आदि जानते थे कि श्री कृष्ण आठवें पुत्र के रूप में प्रकट होने वाले हैं माता देवकी के गर्भ से, क्योंकि भविष्यवाणी तो हो चुकी थी, आकाशवाणी हुई थी, जबकि कंस देवकी को वसुदेव के साथ अपने नए घर पहुंचाने ले जा रहे थे। तो भक्त होने के नाते अक्रूर जी और अन्य भक्त बहुत आतुर थे श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए और श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को देखने के लिए। इसलिए वो कंस के साथ रहे, क्योंकि वो जानते थे कि अभी शीघ्र ही श्री कृष्ण प्रकट होने वाले हैं। तो भगवान के भक्त जो होते हैं वो सदैव भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए उत्सुक होते हैं। जैसे यहाँ राधा गोकुलानंद का दर्शन करने के लिए आप सब बहुत आतुर रहते हैं, विशेष करके उत्सव के समय तो सभी आते हैं दर्शन करने के लिए, मंगल आरती में भी आते हैं और प्रतिदिन भी आप में से कई भक्त आते हैं। जो प्रतिदिन नहीं आ सकते हैं कम से कम हफ्ते में एक दो बार तो आ ही जाते हैं। तो ऐसी आतुरता स्वाभाविक है भक्त के लिए, क्योंकि भक्त भगवान का दर्शन करना चाहते हैं। तो अक्रूर जी भी भगवान का साक्षात दर्शन करना चाहते थे और उनकी बाल लीलाओं को भी देखना चाहते थे। तो ये एक महत्वपूर्ण कारण था। दूसरा कारण ये था कि ये सारे जो देवलोक के निवासी थे पहले पूर्व और अब जो यहां यदुवंशी बने थे, वो देवकी के छह पुत्रों के आने वाले जन्म को भी देखना चाहते थे। और इसके पीछे एक रहस्य है जिसका संक्षेप में उल्लेख प्रभुपाद जी यहां तात्पर्य में करते हैं। बहुत प्राचीन काल की बात है, ब्रह्मा जी के एक पुत्र है जिनका नाम है मरीचि। मरीचि के 6 पुत्र थे जिन्होंने ब्रह्मा जी का एक बार उपहास किया, जबकि ब्रह्मा जी का उपहास करना उचित बिल्कुल नहीं था, क्योंकि ब्रह्मा जी भगवान के श्रेष्ठ भक्त हैं, सर्वप्रथम दीक्षित भक्त हैं और ब्राह्मण भी हैं। वेद का प्रचार तो ब्रह्मा जी ही करते हैं। इस ब्रह्मांड के भीतर सृष्टिकर्ता भी स्वयं ब्रह्मा जी हैं। तो ब्रह्मा जी की कोई एक भूल हुई तो इसका उपहास किया और उनको शाप मिला फिर कि तुम एक असुर योनि में जन्म लोगे, असुर के पुत्र बन जाओगे। और फिर उनको जन्म लेना पड़ा हिरण्यकशिपु के पोतों के रूप में, कालनेमी के वो पुत्र बने। कालनेमी भी एक असुर था। तो एक बार ये कालनेमी के 6 पुत्र तपस्या करने गए और ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए उनकी तपस्या के को देखकर, उनके सामने प्रकट हुए, पूछा कि तुम क्या चाहते हो। तो ब्रह्मा जी, तो जो कालनेमी के 6 पुत्र हैं, उन्होंने कहा कि हम ये चाहते हैं वरदान आपसे कि हमारी हत्या कोई मनुष्य नहीं कर पाए या कोई देवलोक के निवासी नहीं कर पाए, जैसे देवलोक हो, गंधर्व लोक हो, किन्नर लोक हो इत्यादि। तो ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। तो जब वो तपस्या करके वापस चले आए और हिरण्यकशिपु को पता चला कि ये लोग मेरा आश्रय ग्रहण न करके ब्रह्मा जी का आश्रय ग्रहण करने के लिए चले गए और वहां उतनी तपस्या उन्होंने की, तो हिरण्यकश्यप के अहंकार को चोट पहुंची, उनको बड़ा क्रोध आया। तो क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने श्राप दे दिया अपने पोतों को और कहा कि क्योंकि तुमने मेरा आश्रय छोड़ के ब्रह्मा जी का आश्रय ग्रहण किया तो मैं तुम्हें यह श्राप देता हूं कि अगले जन्म में तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे पिता, अर्थात इस जन्म में जो पिता है कालनेमी, उसके हाथों द्वारा ही होगा। और तुम्हारा जो पिता है कालनेमी, वो कंस के रूप में जन्म लेगा और तुम जो हो 6 पुत्र, 6 जो कालनेमी के पुत्र हो, वो देवकी के गर्भ से जन्म लोगे। तो इस तरह से फिर कालनेमी के 6 पुत्र देवकी के 6 पुत्रों के रूप में प्रकट हुए और कालनेमी कंस बन गया अगले जन्म में। तो कालनेमी के 6 पुत्रों को षडगर्भ कहते थे। वो धनुर्विद्या में बड़े प्रवीण थे, बहुत बलवान थे, परंतु अब इस श्राप के द्वारा वो माता देवकी के गर्भ में प्रकट हुए। तो ये उनका तीसरा जन्म था और तीसरे जन्म के बाद फिर उनको ये बताया था कि हाँ, फिर आप वापस जा सकते हो, कि वैसे उनको ये जन्म लेना अनिवार्य था ब्रह्मा जी के श्राप के द्वारा। तो एक के बाद एक जब ये 6 बच्चे प्रकट हुए माता देवकी के गर्भ से, तो फिर कंस ने एक एक करके उनका वध करना शुरू कर दिया। और ये वध करना वैसे उन बच्चों के लिए अच्छा था, क्योंकि ये प्रश्न होता है कि इतना क्रूर कार्य भगवान ने माता देवकी के गर्भ के से जन्म लेने वाले बच्चों के साथ क्यों करवाया? माता देवकी को ऐसे कष्ट क्यों सहन करना पड़ा? ये छह बच्चों के लिए ये भला हो गया वास्तव में। जैसे गंगा जी के जो सात पुत्र थे पहले भीष्म देव के पहले, उनकी भी तो हत्या स्वयं गंगा जी ने ऐसे कर दी, अपने ही जल में उनको डुबो दिया ताकि उनकी मृत्यु हो गई। और महाराज शांतनु को समझ में नहीं आया कि गंगा देवी ऐसे क्यों कर रही है, क्योंकि गंगा देवी ने एक शर्त रखा था विवाह करने के पहले कि मुझे आप कभी भी टोकोगे नहीं, कभी अपशब्द नहीं कहोगे। इसलिए शांतनु महाराज काफी लंबे समय तक चुप रहे। लेकिन आठवें बच्चे को भी जब वो ऐसे करने जा रही थी, तब महाराज शांतनु से रहा नहीं गया। वो बोल पड़े कि अरे क्रूर स्त्री, तुम ऐसे क्यों कर रही हो? अपने सात बच्चों को तो मार दिया, अब कम से कम इस आठवें बच्चे को तो मत मारो। तब गंगा देवी ने कहा कि आपने आपके वचन को तोड़ दिया है, और मैंने आपसे कहा था कि आप यदि वचन तोड़ोगे और मुझसे अपवचन अपशब्द कुछ कहोगे तो मैं आपको छोड़ के चले जाऊंगी। तो तुरंत वहां से वो निकल पड़ी। ये आठवें बच्चे तो भीष्म देव थे। बाद में अनेक वर्षों के बाद जब गंगा देवी ने इस बच्चे को अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया था और यहां वहां स्वर्ग लोक में भी भेजा था प्रशिक्षण के लिए, तब भीष्म देव प्रकट हुए थे। तो ऐसे गंगा देवी ने स्वयं अपने बच्चों को क्यों मार दिया, ये सबको पता नहीं था। महाराज शांतनु को भी पता नहीं था, लेकिन इसके पीछे एक रहस्य था। ये वसु थे, अष्ट वसु, और उनको श्राप मिला था, और उनको ये भी कहा गया था कि इस एक बार जन्म लेने के बाद पृथ्वी लोक के ऊपर जब आपकी मृत्यु हो जाएगी तो आप पुनः अपने धाम को प्राप्त कर लोगे। तो इसलिए गंगा देवी का आश्रय ग्रहण करने के लिए अष्टवसु आए थे। तो गंगा देवी ने कहा था ठीक है, तो मैं आपकी सहायता करूंगी। तो ये अष्टवसु गंगा देवी के पुत्र बने और गंगा देवी ने उनका उद्धार कर दिया, जल्दी ही उनको वापस स्वर्ग लोक भेज दिया। तो इसके पीछे रहस्य ये था। ठीक उसी तरह से माता देवकी के गर्भ से जन्म लेने वाले जो छह बच्चे थे, उनकी हत्या के लिए अनुमति भगवान कृष्ण ने क्यों की, क्यों दे दी, इसके पीछे ये रहस्य था कि उनको अपने धाम में लौटाना था भगवान को। इसलिए कंस को उन्होंने एक निमित्त बना दिया। और ऐसे एक के बाद एक जब छह बच्चों का वध होता गया तो फिर ये अपने अपने जगह वापस चले गए। वैसे बताया जाता है कि ये सीधे अपने धाम में नहीं चले गए। जैसे ही कंस ने इनका वध किया, ये सुतल लोक में चले गए। सुतल लोक में कौन रहते हैं? बलि महाराज। आप सबको याद होगा कि जब श्री कृष्ण ने कंस का वध किया, जब वो बलराम जी के साथ में मथुरा आए थे, तो माता देवकी और वसुदेव बहुत प्रसन्न हुए थे। कितने वर्षों के बाद वो अब अपने दोनों पुत्रों का दर्शन कर रहे थे। जैसे ही श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ था माता देवकी के गर्भ से, तो वैसे ही वसुदेव बाध्य हुए थे श्री कृष्ण को मथुरा से गोकुल ले जाने में। तो देवकी और वसुदेव को यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था श्री कृष्ण के बाल लीलाओं को देखने के लिए। तुरंत वसुदेव ले गए श्री कृष्ण को यमुना पार करके गोकुल में। और अब 10.5 साल बाद पहली बार देवकी और वसुदेव श्री कृष्ण का दर्शन करने जा रहे थे और कर रहे थे। तो खुशी की कोई सीमा नहीं रही उनकी। और जब श्री कृष्ण ने उनसे पूछा कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। तो उस समय देवकी ने कहा था कि मैं मेरे 6 पुत्रों को देखना चाहती हूं, क्योंकि जन्म होते होते ही कंस ने उनका वध कर दिया। तो देखिए देवकी माता की क्या परिस्थिति थी। 6 बच्चों का जन्म हुआ, उनकी तुरंत मृत्यु हो गई। कंस ने आके देवकी के सामने बड़े क्रूरता से पत्थर के ऊपर टोक के पीट के उन बच्चों का वध कर दिया। देखिए कौन माँ है जो ऐसे अपने 1 बच्चे की बात तो दूर रही, 6 बच्चों के लगातार ऐसे मृत्यु अपने आंखों के सामने देख सकती है। कितना दुख माता देवकी को हुआ। फिर 7वीं बार जब गर्भवती वो हुई तो ऐसे वो मान गए कि गर्भपात हो गया, तो 7वीं बार भी ऐसे हुआ। और 8वीं बार जब स्वयं भगवान प्रकट हुए उनके गर्भ से तो स्तनपान भी नहीं करा पाई, उनको दूध भी नहीं पिला पाई उस बच्चे को। बाल लीलाओं को देखने की बात दूर है, अपने बच्चे को दूध भी नहीं पिला पाई। तो इस बार जब श्री कृष्ण प्रकट हुए थे तो देवकी माता ने चाहा कि मैं अपने बच्चों का दर्शन करना चाहती हूं। तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि श्री कृष्ण और बलराम फिर ये सीधे गए बलि महाराज के जगह सुतल लोक में, क्योंकि वो जानते थे कि ये 6 बच्चे वहां पर हैं। तो वहां जाके बलि महाराज के ऊपर उन्होंने कृपा कर दी और बलि महाराज ने माता देवकी के 6 बच्चों को सौंप दिया कृष्ण के हवाले। तो फिर ये चले आए, श्री कृष्ण बलराम इन 6 बच्चों को लेकर चले आए, बाल रूप में ही थे। तो माता देवकी ने चाहा कि मैं अब वो कार्य जो नहीं कर पाई मेरे 8 बच्चों के साथ, मैं आज वो करना चाहती हूँ। क्योंकि किसी माँ का एक माता का उद्देश्य का एक की इच्छा होती है कि वो अपने बच्चे को दूध पिलाए। तो इस समय भी ऐसे ही हुआ। सबसे छोटे बच्चे को पहले दूध पिलाया माता देवकी ने। सबसे छोटे बच्चे कौन थे माता देवकी के? कृष्ण थे। तो कृष्ण को दूध पिलाया और फिर एक के बाद एक जितने उनके और 6 बच्चे थे उनको भी दूध पिला दिया। तो वैसे जब श्री कृष्ण ने माता देवकी का दूध पिया तो फिर वो दूध जो है वो महाप्रसाद हो गया और फिर वही दूध का पान इन 6 बच्चों ने कर दिया तो उनको भी श्री कृष्ण का महाप्रसाद मिल गया, उनका उद्धार हो गया। फिर उसके बाद वो अपने धाम में चले गए जहां से कि वो पहले आए थे। और क्योंकि वो श्री कृष्ण बलराम के बड़े भाई थे और उन्होंने श्री कृष्ण का महाप्रसाद का पान किया था इसलिए उनका उद्धार तो निश्चित था। फिर भी उनका जो मरीचि के पुत्र के रूप में जन्म हुआ था वो जन्म की अवधि पूरी करनी थी भगवान के धाम जाने के पहले, इसलिए पुनः वो अपने धाम में ऊपर स्वर्ग लोक में वापस चले गए, ऊपरी लोकों में चले गए वापस। तो ये एक संक्षिप्त में इतिहास है। और जब ये हुआ तो प्रश्न आ सकता है कि ये जो 6 बच्चे हैं ये पहले तो असुर थे, काल नेमि के पुत्र थे, तो माता देवकी के गर्भ में ये कैसे आए और क्यों आए? माता देवकी तो श्री कृष्ण की माता है, बलराम जी की माता है। तो ऐसे एक शुद्ध सत्वमय स्थान में, पूरे आध्यात्मिक स्थान में ऐसे 6 असुरों के पुत्र कैसे आ सकते हैं? असुरों के जो पुत्र हैं वो तो शुद्ध नहीं होते हैं और जो असुर होते हैं वो कभी ऐसे दिव्य स्थान में तो प्रकट होते नहीं हैं, तो फिर ऐसे क्यों हुआ? वैसे माता देवकी का गर्भ शुद्ध है फिर भी असुर ये वहां पे आए, इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे भगवान महाविष्णु महाप्रलय के बाद जब संपूर्ण सृष्टि का विनाश होता है तो सारे जीव भौतिक प्रकृति के साथ महाविष्णु में लीन हो जाती है, और उसके बाद जब सृष्टि के सृजन का समय आता है तो ये प्रकृति भी भगवान प्रकट कराते हैं और जीवों को भी प्रकृति में प्रदान करते हैं। उस समय महाविष्णु का कोई स्पर्श नहीं होता, न प्रकृति से न इन जीवों से। महाविष्णु उदासीन रहते हैं, स्पर्श नहीं करते हैं। मया ततमिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि मेरे शक्तियों के द्वारा मैं सर्वव्यापी हूं, मैं सब जगह उपस्थित हूं, सब कुछ मुझ में है लेकिन मैं सब में नहीं हूं। होते हुए भी भगवान कहते हैं कि मैं नहीं हूं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भगवान श्री कृष्ण के अंदर सब कुछ होते हुए भी भगवान निरासक्त रहते हैं, उदासीन रहते हैं, स्पर्श नहीं करते हैं अपने भौतिक शक्ति से और नहीं जीवों से। ठीक उसी प्रकार माता देवकी शुद्ध सत्वमय होने के कारण इन असुरों का स्पर्श नहीं कर रही थी, जैसे कि महाविष्णु भौतिक प्रकृति का या जीवों का स्पर्श नहीं करते हैं। तो ये एक बहुत रहस्यमय बात है। और एक रहस्य है जिसका वर्णन श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर करते हैं। वो कहते हैं कि माता देवकी भक्त अवतार हैं, भक्ति के रूप हैं। जब तक कोई व्यक्ति भगवान का श्रेष्ठ भक्त न हो, उसका ऐसे निकट का संबंध भगवान से कैसे हो सकता है? क्या कोई साधारण व्यक्ति श्री कृष्ण के माता या पिता बन सकते हैं? संभव नहीं है। श्रेष्ठ भक्त ही होनी चाहिए, इसलिए तो भगवान ने उनको चुना है कि चलो आप मेरी माता रहोगे, आप मेरे पिता रहोगे। तो माता देवकी भक्त अवतार है क्योंकि उनके हृदय में सदा श्री कृष्ण के प्रति प्रेम था, भक्ति थी। दूसरी ओर कंस जो हैं ये भय अवतार है क्योंकि सदा कृष्ण के प्रति भय की भावना कंस के हृदय में रहती थी। 24 घंटे श्री कृष्ण का स्मरण कंस करता था, फिर भी कंस को शुद्ध भक्त नहीं कहा जाता क्योंकि कंस की जो भावना थी वो प्रतिकूल थी, अनुकूल नहीं थी, प्रेम की भावना नहीं थी। कंस के मन में विशेष करके घृणा ईर्ष्या तो थी ही, परंतु सबसे बलवान जो भावना थी वो भय की थी। अरे मैंने आकाशवाणी सुन ली कि मेरे बहन देवकी का 8वां पुत्र मेरे मृत्यु का कारण बन जाएगा, तो हर एक व्यक्ति अपने मृत्यु से भयभीत रहता है, कोई मरना नहीं चाहता है। तो कंस भी इतना शक्तिशाली होने के बाद भी अपने मृत्यु से डरता था, और क्योंकि उसे पता चला कि कृष्ण मेरे मृत्यु का कारण होने वाले हैं तो वो कृष्ण से डरने लगा। जब से यह आकाशवाणी हुई तब से कंस 2400 घंटे डरते रहा। यहां तक कि सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि जब कंस सोता था कृष्ण को देखता था, जब उठ के बैठता था कृष्ण को देखता था डर के मारे, जब चलता था कृष्ण को देखता था, जब कोई जल आदि कुछ पीने भी जाता तो जल में भी कृष्ण को ही देखता था। सर्वत्र हर समय कृष्ण का दर्शन वो करता था कि कृष्ण कृष्ण कृष्ण, उसका चित्त पूरी तरह से कृष्णमय था, परंतु भय के कारण, प्रेम के कारण नहीं। तो कृष्ण भावना भावित था कृष्ण कंस, परंतु उसे भक्त नहीं कहा जाता है, क्योंकि सच्चा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति वो होता है जिसके हृदय में प्रेम होता है कृष्ण के प्रति। शिशुपाल इत्यादि ये भी ऐसे उदाहरण हैं जो 2400 घंटे कृष्ण का स्मरण करते थे, परंतु शिशुपाल के हृदय में ईर्ष्या थी, शाल्व के हृदय में घृणा थी, कंस के हृदय में भय था। इसलिए कृष्ण का 2400 घंटे स्मरण करने के बाद भी वो भक्त नहीं कहलाते हैं। तो कंस जो है ये भय के अवतार हैं, और ये 6 जो बच्चे हैं जो माता देवकी के गर्भ से प्रकट हुए, ये जो षड गर्भ हैं, ये कौन हैं, किन चीजों के प्रतीक हैं? श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा है ये षड रिपु हैं, रिपु अर्थात हमारे शत्रु। तो हमारे सबसे बड़े शत्रु कौन हैं? हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं जो हमारे हृदय में बैठे हैं, जो अनर्थ हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये हमें बहुत परेशान करते हैं और हमें पुनः पुनः जन्म लेने, भौतिक जगत में जन्म लेने के लिए बाध्य कर देते हैं। श्रील प्रभुपाद बताते हैं अपने तात्पर्य में कि शुद्ध भक्त जो होते हैं नवविधा भक्ति करने की वजह से सदैव दिव्य स्तर में स्थित रहते हैं, इसलिए वो इस दुनिया में रहते हुए भी दुनिया के नहीं हैं, दुनिया के परे होते हैं सदैव, क्योंकि 2400 घंटे नवविधा भक्ति करते रहते हैं, श्रवण कीर्तन स्मरण आदि। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं जो भक्त होते हैं भगवान के, हालांकि वो दिव्य स्तर में स्थित होते हैं, फिर भी माया से डर के रहते हैं। एक बार प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों से कहा कि वैसे आप लोग माया से इतना डरते नहीं हो जितना डरना चाहिए। माया से डर के रहना चाहिए इसका मतलब है कि हमें बहुत सावधान रहना चाहिए कि हम कोई गलत काम नहीं करें, कभी भी माया हमें पकड़ सकती है। एक बहुत नाजुक परिस्थिति है सब बद्ध जीवों की। जो भक्त नहीं है वो तो माया के चंगुल में फंसे हुए हैं ही, परंतु वो बद्ध जीव जो माया के चंगुल से निकलना चाहते हैं, उनको तो बहुत सावधान रहना चाहिए कि वो पुनः माया के चंगुल में न फंसें। यहां तक कि जो माया से मुक्त हो भी चुके हैं परंतु अभी तक भौतिक जगत में हैं, उन्हें भी बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, ऐसा प्रभुपाद जी कहते हैं। कोई ऐसे शुद्ध भक्त जो होते हैं वो भी माया से बड़े दूर ही रहते हैं, बड़े सावधान रहते हैं, डर के रहते हैं। तो ऐसे डर के मारे उनके हृदय में जो ये षड रिपु हैं, 6 शत्रु, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये मर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो देवकी जो भक्ति के अवतार हैं, भय के अवतार, कम से डरती थी, तो ऐसे डर के मारे उस डर ने जो है, अर्थात कंस ने वो 6 बच्चों को मार दिया, अर्थात उस डर के मारे जो हृदय के अंदर हमारे ये 6 शत्रु हैं वो नष्ट हो जाएंगे। और भी जब ये 6 नष्ट हो जाते हैं तो फिर हमारा हृदय शुद्ध सत्वमय हो जाता है, पूरी तरह से आध्यात्मिक या दिव्य हो जाता है। तो अब भगवान के आगमन की तैयारी हमारे हृदय में हो सकती है। तो जब ये 6 बच्चे मारे गए और वो फिर अपने अपने स्थान में चले गए, तो अब बलराम जी प्रकट हुए, शेष संकर्षण शेष अनंत ये प्रकट हुए। उनका नाम शेष है क्योंकि ये सृष्टि के शेष हैं, और अपने एक फण के ऊपर वो इस एक ब्रह्मांड को धारण करते हैं मानो कि वो एक तिल का कोई बीज हो। कितना छोटा होता है तिल का बीज या सरसों का बीज, जब हम उसे पकड़ते हैं हाथ में या कहीं तो हमें भारी नहीं लगता। तो उसी तरह से शेष भगवान जब इस एक ब्रह्मांड को अपने फण के ऊपर धारण करते हैं तो उनको भारी नहीं लगता, और उस शेष को अनंत भी कहते हैं क्योंकि वो अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने अनंत फणों के ऊपर ऐसे धारण करते हैं, और ये कुल मिलाकर जितना भी वजन है अनंत कोटि ब्रह्मांडों का वो भी ऐसे बहुत हल्का उनको प्रतीत होता है, इसलिए वो अनंत कहलाते हैं। तो आज इन श्लोकों को हमने पढ़ा। इन श्लोकों में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि अनंत अब सातवें पुत्र के रूप में प्रकट हुए, माता देवकी के गर्भ में आए वो, और बाद में आगे चल के जैसा कि आप सबको पता है श्री कृष्ण ने योग माया को बुलाया और कहा कि अब मेरे माता देवकी के गर्भ में मेरे अंश रूप अनंत या शेष ये वहां पर हैं, उपस्थित हैं, तो उनका स्थानांतरण करना है आपको। उनको माता देवकी के गर्भ से निकालकर माता रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित करना है, क्योंकि बलराम जी की नित्य माता है रोहिणी देवी। तो फिर प्रश्न ये आता है कि यदि ऐसा है तो फिर बलराम जी सीधे माता रोहिणी के गर्भ में क्यों नहीं प्रकट हुए, ऐसे अप्रत्यक्ष रूप से यहां से लंबे रास्ता लेके क्यों गए, पहले माता देवकी की गर्भ से जन्म लिया और फिर गर्भपात हो गया, ऐसे प्रतीत हुआ, ऐसे लोगों को ने सोचा कि गर्भपात हुआ है, और फिर माता देवकी के गर्भ से होते हुए फिर माता रोहिणी के गर्भ में आए, तो सीधे माता रोहिणी के गर्भ में जाना चाहिए था, तो ऐसे माता देवकी के गर्भ से होते हुए क्यों गए। तो इसके पीछे भी एक रहस्य है। रहस्य ये है कि माता देवकी के गर्भ की तैयारी उन्होंने की श्री कृष्ण के आगमन के लिए। बलराम जी तो सेवा करते हैं ना श्री कृष्ण की, जैसे हम पहले कह चुके हैं, तो हर तरह से सेवा करते हैं और दास्य रूप में भी वो सेवा करते हैं। तो चैतन्य चरितामृत में आदि लीला के छठे अध्याय में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि बलराम जी श्री कृष्ण की सेवा 10 तरह से करते हैं। वो 10 रूपों में आके भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं। पहली बात कविराज गोस्वामी बताते हैं कि बलराम जी श्री कृष्ण की शैया बन जाते हैं। दूसरी बात, अपने विस्तार से बलराम जी श्री कृष्ण के आसन बन जाते हैं। तीसरी बात, श्री कृष्ण के तकिया बन जाते हैं। चौथी बात, श्री कृष्ण का वो चामर बन जाते हैं। पांचवी बात, वो श्री कृष्ण के पादुकाएं बन जाते हैं। छठी बात, श्री कृष्ण के पंखे बन जाते हैं वो। फिर श्री कृष्ण की छतरी बन जाते हैं। आठवीं बात, वो श्री कृष्ण के वस्त्र बन जाते हैं। नौवीं बात, वो श्री कृष्ण के गहने या आभूषण बन जाते हैं। और अंततः वो श्री कृष्ण की उपवीत जो जनेऊ होता है वो बन जाते हैं। तो श्री कृष्ण के जितने भी सामग्री हैं, उनके कपड़े हैं, शैया है, शयन है, ये सब बलराम जी के ही विस्तार हैं। बल्कि सारा जो गोलोक वृंदावन है ये भगवान श्री बलराम जी का विस्तारित रूप है। तो ऐसे बलराम जी व्यवस्था करते हैं श्री कृष्ण की लीलाओं के लिए। और एक ऐसे आधार बनाते हैं जिसमें कि श्री कृष्ण की लीलाएं बड़े अच्छे ढंग से सुचारू रूप से हो सकें, संपन्न हो सकें। तो बलराम जी ऐसे सेवा करते हैं, शांत रस में, दास्य रस में और अन्य रसों में भी। तो अब यहां माता देवकी के गर्भ में बलराम जी को पहले प्रकट होना था, अनंत या शेष को। पलंग बने वो, जब बच्चे का जन्म होता है तो उसे छोटे से पलंग में रखते हैं, तो जब श्री कृष्ण को आना है तो श्री कृष्ण के पहले पलंग चाहिए। जब किसी गृहस्थ के घर में बच्चे का जन्म होना होता है तो बच्चे के जन्म के पहले ही बच्चे के लिए छोटा सा पलंग ले जाता है ना, तैयारी होती है पहले। ऐसे नहीं कि बच्चे के जन्म होने के बाद फिर बाजार में भागो देखो कि कहां बच्चे के लिए पलंग मिलेगा, पहले से तैयारी होती है। तो उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य जब माता देवकी के गर्भ में होना था तो उसके पहले अंदर भी एक पलंग चाहिए था। तो बलराम जी वो पलंग बन गए, वो आसन भी होते हैं भगवान के, इसलिए बलराम जी को पहले आना था। और ऐसे बलराम जी आए, साथ साथ में कृष्ण की तैयारी हो गई, फिर कृष्ण आने के लिए फिर वहां तैयार हुए। और एक कारण भी है, दूसरी पहली बात तो ये है कि कृष्ण का प्राकट्य हमारे हृदय में कौन करा सकता है। जब गुरु की कृपा होती है, गुरु के मार्गदर्शन से, गुरु की सेवा करने से, गुरु की उपस्थिति से, फिर कृष्ण प्रकट होते हैं। तो बलराम जी आदि गुरु हैं, वो मूर्तिमान गुरु तत्व है। तो श्री कृष्ण के प्रकट होने के पहले हमारे जीवन में गुरु होने चाहिए। जब गुरु होंगे तो गुरु की कृपा से फिर कृष्ण हमारे जीवन में प्रकट हो सकते हैं। तो क्योंकि बलराम जी गुरु तत्व हैं तो वो पहले प्रकट हुए और उसके बाद फिर श्री कृष्ण प्रकट हुए। इसलिए बलराम जी पहले देवकी के गर्भ में आए और फिर रोहिणी माता के गर्भ में चले गए। सीधे रोहिणी के गर्भ में प्रकट नहीं हुए। अब और एक सूक्ष्म बात आपको बताना चाहते हैं कि यदि रोहिणी माता बलराम जी की नित्य माता हैं तो केवल रोहिणी को ही बलराम जी की माता होनी चाहिए, माता देवकी कैसे फिर उनकी माता बन सकती हैं। यहां पे बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण के एक अंश हैं अनंत या शेष, वो माता देवकी के घर में प्रकट हुए। मूल जो बलराम हैं वो तो केवल रोहिणी के घर में थे। और इस तरह से यहां से जब स्थानांतरित किया गया तो मूल जो बलराम है वो तो वहीं रहते हैं, और जिस तरह से श्री कृष्ण में उनके सारे विस्तार सम्मिलित रहते हैं सदैव, जैसे विष्णु तत्व जितने भी विष्णु रूप हैं वो सब श्री कृष्ण में रहते हैं, उसी तरह से बलराम जी में भी उनके जो विस्तार हैं वो समाये हुए रहते हैं। तो बलराम जी माता रोहिणी के नित्य पुत्र हैं। अब योग माया को श्री कृष्ण ने बुलाया और कहा, यहां सुखदेव गोस्वामी स्वयं वर्णन करते हैं कि वो कैसे बुलाते हैं योग माया को, और बुलाकर क्या कहते हैं, गच्छ देवी व्रजम भद्रे गोप गोभीर अलंकृतम रोहिणी वासुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले अन्यश्च कंस संविघ्ना विवरेषु वसंति ही। हे भद्रे, हे भद्रा, मतलब योग माया देवी को कहते हैं, क्योंकि तुम शुभ हो और तुम सब जगह मांगल्य को फैलाओगी भौतिक जगत में। तुम ले जाओ, तुम जाओ पहले, और देवकी जो मेरी माता है मथुरा में, उनके पास जाओ और वहां जाके तुम उनके गर्भ में जो मेरे अंश निवास करते हैं उनको स्थानांतरित कर दो। और वहां उसको करने के बाद तुम स्वयं देवकी के गर्भ में जन्म ले लेना, तुम प्रकट हो जाना वहां पे, और वहां उसके बाद तुम व्रज चले जाना, जहां पे व्रज में रोहिणी माता रहती हैं, नंद महाराज के संरक्षण में। वसुदेव के जो अन्य पत्नियां हैं वो भी वसुदेव के साथ में रहती हैं कंस के भय से। और तू जब वहां तुम जाना और वहां उनकी पुत्री बन जाना, इस तरह से फिर मैं भी प्रकट हो जाऊंगा, मैं आठवां पुत्र माता देवकी का मैं बन जाऊंगा। तो भगवान कृष्ण ने आदेश दिया योग माया देवी को कि तुम जाके अब यशोदा माता के पुत्री बन जाना। तो खैर, अभी प्रश्न यह उठता है कि माता रोहिणी कब गई। गोपाल चंपू नाम के ग्रंथ में जीव गोस्वामी पाद बताते हैं कि रोहिणी माता जब गर्भवती थी और 3 महीने हो चुके थे गर्भ के, उस समय वसुदेव ने रोहिणी देवी को भेज दिया गोकुल में नंद महाराज के पास, क्योंकि नंद महाराज और वसुदेव बड़े घनिष्ठ मित्र थे, और अपने अन्य रानियों को भी भेज दिया वसुदेव ने। और ये श्रावण महीने के एक दिन को हुआ, शाम को। और फिर माघ महीने में जब रोहिणी माता के 7 महीने पूरे हो गए थे गर्भवती होकर, उस समय ये स्थानांतरण हुआ बलराम जी का। अनंत शेष को योग माया देवी ने देवकी के गर्भ से रोहिणी माता के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। उस समय रोहिणी माता के 7 महीने हुए थे गर्भवती होकर। देवकी माता को पता नहीं चला कि मेरा गर्भ जो है योग माया देवी ले गई हैं। उनको सपने, वो गहरी नींद में थी, उनको लगा सपने में क्या हुआ, उनको पता नहीं चला। और उधर माता रोहिणी जब रात में सो रही थी, उनको पता, उनको ऐसे प्रतीत हुआ कि मेरा गर्भपात हो गया है, परंतु सपने में ही योग माया देवी आई और रोहिणी देवी से कहने लगी कि हे देवी, आप चिंता नहीं करना, अब आपके गर्भ में, माता देवकी के गर्भ से मैं स्वयं अनंत शेष को लाई हूं, वो आपके पुत्र के रूप में जन्म लेने वाले हैं। और फिर जब रोहिणी माता जगी तो उन्हें देखा कि अब बलराम जी का जन्म हुआ है। वैसे खैर, बलराम जी का जन्म तो काफी बाद में हुआ, पर ये स्थानांतरण जब हुआ उस समय रोहिणी देवी को पता नहीं चला था कि क्या हुआ है। तो ये माघ महीने में हुआ, और बलराम जी का जन्म जो हुआ वो श्रावण पूर्णिमा में हुआ, आज के दिन। तो माघ महीने में और श्रावण महीने में कितना अंतर है। श्रावण में, माघ महीने में 7 महीने पूरे हुए थे, तो और उसके बाद फिर आगे चल के श्रावण में। तो इससे हमें पता चल सकता है कि बलराम जी पूरे 14 महीने माता रोहिणी के गर्भ में रहे, फिर उनका जन्म हुआ श्रावण पूर्णिमा में। तो ऐसे इसी दिवस पर बलराम जी प्रकट हुए थे। तो रोहिणी माता ये तो बलराम जी की नित्य माता है। उधर जब देवकी माता के गर्भ से योग माया ने अनंत शेष को ले लिया और गोकुल ले गई तो सभी को लगा कि गर्भपात हो चुका है, इसलिए कंस को भी कोई चिंता नहीं हुई थी, चलो अब कोई समस्या नहीं है, अब अगली बार जब पुत्र होगा तब देखेंगे। इस तरह से बलराम जी का अंततः जन्म गोकुल में इसी दिवस पर श्रावण पूर्णिमा के समय हुआ था। बलराम जी की लीलाएं अनेक हैं, आज शाम को बलराम जी की थोड़ी बहुत लीलाओं का श्रवण हम सब करेंगे। तो आज इस पावन दिवस पर हम बलराम जी के चरण कमलों में प्रार्थना कर सकते हैं कि वो हमें कृपा प्रदान करें, आध्यात्मिक बल प्रदान करें, भक्ति प्रदान करें, क्योंकि वो स्वयं आदि गुरु हैं और उनके आविर्भाव दिवस के ऊपर अवश्य वो और भी ज़्यादा कृपालु रहेंगे। इसलिए बलराम जी के द्वारा प्राप्त हुए आध्यात्मिक बल से हम भगवान इस भौतिक जगत के माया शक्ति को पार कर पाएंगे और भगवान श्री कृष्ण के प्रति शुद्ध भक्ति की भावना भी जागृत कर पाएंगे। श्री बलराम जी की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। गौर प्रेमानंदे हरे कृष्ण। माइक स्लाइड।
एक कालनेमी के पुत्र वो कैसे मारे गए और कालनेमी और हिरण्य कृष्ण का क्या संबंध है?
कालनेमी विष्णु द्वारा मारे गए ऐसे बताया जाता है भागवत में, और फिर उनका जन्म कंस के रूप में हुआ। तो कालनेमी और हिरण्यकश्यप का संबंध क्या है, वो उनके शायद पत्नी के, उनकी पत्नी हो सकती, उनकी पुत्री हुई होंगी, या कोई ऐसे एक संबंध था उनका निकट का, इसलिए कहा जाता है कि उनके नाते थे ये बच्चे, कालनेमी के पुत्र हिरण्यकश्यप के नाते थे। और कोई प्रश्न? हाँ, माइक क्या थे? प्रश्न ये है कि हिरण्यकश्यप ने ऐसे श्राप दिया तो जब उनको पता था कि भविष्य में ऐसे होगा तो उन्होंने विष्णु भगवान को भी कृष्ण के रूप में क्यों नहीं माना? देखिए हिरण्यकश्यप असुर है इसलिए तो नहीं माना ना। जब नरसिंहदेव भगवान प्रकट हुए तो हिरण्यकश्यप को भलीभांति पता था कि ये विष्णु है, विष्णु भगवान है, ये पता था, फिर भी ईर्ष्या इतनी थी कि और अहंकार इतना था, उन्होंने सोचा कि विष्णु भी मेरा क्या बिगाड़ सकता है, तो विष्णु या नरसिंहदेव के साथ भी युद्ध करना ठीक समझा हिरण्यकश्यप में। यही असुरी वृत्ति होती है। प्रश्न ये है कि ब्रह्मा ने कालनेमी के 6 पुत्रों को वर दिया था कि वो देवताओं के हाथों के द्वारा नहीं मारे जाएंगे, तो उनको ऐसे श्राप कैसे मिला हिरण्यकश्यप द्वारा कि वो आगे अगले जन्म में मारे जाएंगे? हाँ, हिरण्यकश्यप का श्राप तो अगले जन्म के लिए था, इस जन्म के लिए नहीं था। इस जन्म में जब वो मरे, वो मरे उस समय, लेकिन जो हिरण्यकश्यप ने श्राप दिया था कि वो तुम अगले जन्म में मारे जाओगे तुम्हारे इस जन्म के पिता के हाथों के द्वारा, तो इस जन्म में ब्रह्मा जी का वरदान तो बना रहा। हाँ,
बलराम जी ने 5 वर्षों में भी भगवान की सेवा किया था।
हाँ,
और उसमें मेन दास्य
रसा था, दास्य सख्य सब में किया।
माधुर्य रस पहुंचने के बाद ही जीवन का परिपूर्णता होगा या
कोई भी रस में रख सकता है, जैसे हनुमान जी हैं। हनुमान जी का संबंध भगवान श्री राम से है दास्य रस में, तो वो हमेशा अपने आप को भगवान का सेवक मानते हैं, दास मानते हैं। तो हनुमान जी भी गोपियों की महानता को जानते हैं, लेकिन यदि उनको बताया जाए कि आप भी गोपी बनना चाहते हो, क्या वो बोलेंगे नहीं, मैं राम की ही सेवा करूंगा, मैं राम का ही दास हूं। तो गोपियों के उच्च स्तर को जानते हुए भी वो अपने स्थान में, अपने रस में स्थित है, स्थिर है, क्योंकि वो भी उनकी परिपूर्णता है। जितने भी ये पांच रसे अपने जगह में परिपूर्ण है। हाँ वन क्वेश्चन, यस। माता देवकी को ऐसे कष्ट क्यों स्वीकार करना पड़ा? हाँ, जैसे माता देवकी भक्त अवतार हैं, तो शुद्ध भक्ति के लिए भय होना जरूरी होता है। जब तक ये जो षड रिपुओं के प्रति हम डरते नहीं हैं, तब तक हम इनका, इनके ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो इसलिए ये आवश्यक है कि हम इन छह के प्रति डरें, और जब डरते हैं तो थोड़ा कष्ट भी होता है। दूसरी बात ये है कि भगवान अपने शुद्ध भक्तों को, शुद्ध भक्तों के द्वारा सारी दुनिया को सिखाते हैं कि किस तरह से भक्तों के जीवन में भी कष्ट आते हैं, और जब कष्ट आते हैं तो भक्तों का व्यवहार कैसे होता है। वो भगवान को छोड़ते नहीं है, भक्ति पथ को छोड़ के नहीं जाते हैं, वो स्थिर रहते हैं। ठीक है। हाँ,
शांत रस कैसा परिपूर्ण हो सकता है? वो तो इनिशियल स्टेज है।
प्रश्न ये है कि शांत रस कैसा परिपूर्ण हो सकता है, क्योंकि वो एक प्रारंभिक स्तर है। वैसे पांच रस हैं, तो पांचों रसों में भगवान की सेवा की जा सकती है। शांत रस वो रस है जिसमें सेवा भाव अत्यधिक विकसित नहीं हुआ होता है, परंतु फिर भी है। जैसे वैकुंठ जगत में शांत रस है, भगवान के पादुकाएं हैं, भगवान के वस्त्र हैं, ये सब शांत रस में उनकी सेवा करते हैं। या गोलोक या वैकुंठ जगत ही है, वो भी एक चिन्मय है, तो ये शांत रस में सेवा करते हैं भगवान नारायण के वैकुंठ जगत में। हाँ, और कोई प्रश्न? हाँ जी, पीछे माइक दीजिए। माइक में पूछिए। हरे
कृष्ण।
क्योंकि उन्होंने, उनको वसुओं की, अष्ट वसुओं की इच्छा पूरी करनी थी। अष्ट वसु आए थे गंगा के पास कि आप जल्दी से जल्दी हमारा उद्धार कर दीजिए। तो वो जानती थी कि ये मेरी सेवा है उनके लिए, क्योंकि उन्होंने निवेदन किया था कि ऐसे हमें श्राप मिला है कि हमें भौतिक जगत में जन्म लेना होगा, और जब ये जीवन समाप्त हो जाएगा तब हम आएंगे। तो उस समय उन्होंने निवेदन किया था गंगा से कि हम आपके पुत्र बने, और फिर आप शीघ्र ही हमें वापस भेज दीजिए, क्योंकि हम पृथ्वी लोक पर नहीं रहना चाहते हैं। तो गंगा जी ने वैसे उनके ऊपर कृपा की, तो गंगा जी अच्छी तरह से जानते थे। और गंगा देवी तो इस पृथ्वी लोक की तो थी नहीं, वो तो भी उनको भी तो श्राप मिला था, इसलिए उनको यहां पृथ्वीलोक में जन्म लेना पड़ा था। हाँ
हिरण्यकश्यप ने श्राप दिया, ये असुर था, और श्राप देने के लिए कुछ पुण्य कमाना थे, तो असुर ने क्या ऐसे पुण्य कमाए थे जिसके बाद वो श्राप देने की कामना।
हिरण्यकश्यप जैसे असुर कोई साधारण असुर नहीं होते हैं। जैसे यहाँ अभी हम देखते हैं हमारे जगत में, भौतिक जगत में, हमारे समय में कितने सारे असुरी वृत्ति के लोग हैं, उनको मारने भगवान आते हैं, कभी भगवान अवतार लेते हैं, उनको छोटे मोटे असुर यहाँ के होते हैं, भले हम उनको बड़े असुर माने, लेकिन हिरण्यकश्यप की तुलना में वो कितने बड़े हैं, कुछ भी नहीं है। तो हिरण्यकश्यप भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो भी तो जय विजय और हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप जय विजय होकर आए हैं, और ऐसी भयंकर शक्ति उनमें थी दोनों में, तो ऐसी ताकत तो भगवान ने उनको दी थी। और ये सत्ययुग की बात है तो ऐसी शक्ति तो सब में रहती थी श्राप देने के लिए। कई बार ऐसे भी देखा जाता है एक दूसरे को श्राप दे देखे, एक दूसरे को नष्ट कर दे। आजकल किसी का श्राप काम नहीं करता ज्यादा, फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी के श्राप पाना चाहें, हमें नहीं, वरदान भी ज्यादा काम नहीं करते, भौतिक वरदान भी काम नहीं करते, भौतिक श्राप भी काम नहीं करते ज्यादा। कलयुग में ऐसी ज्यादा शक्ति है नहीं लोगों की, फिर भी हाँ हमें तो चाहिए कि भक्तों की शुभेच्छा हम सदा प्राप्त करके रहें, भक्तों की शुभेच्छा हमारे लिए बहुत जरूरी है। भक्तों की नाराजगी हमारे ऊपर नहीं होनी चाहिए, हमें भक्ति में प्रगति करनी है तो सब भक्त लोग हमारे बारे में अच्छा सोचें कि उनकी शुभेच्छा हमारे ऊपर रहे, सब लोग एक अनुकूल भाव रखें हमारे ऊपर, तो हमारी भक्ति में प्रगति बिना बाधा के आगे अच्छी तरह से हो सकती है। हाँ माइक है।
वसुदेव और देवकी पूर्व जन्म में कृष्ण और सुख पाते उन्होंने बहुत तपस्या की, और फिर तपस्या करने के बाद भगवान आए, उन्होंने वरदान मांगा, उन्होंने कहा कि आप मेरे पुत्र हो, भगवान कहते हैं कि आपको सीधे वैकुंठ जाना चाहिए, इच्छा कर रहे हमने गलती की।
ये सब भगवान की योजना है ना, यदि भगवान के कोई माता पिता नहीं होंगे तो भगवान की लीला नर लीला कैसे संपूर्ण होगी। वैसे तो भगवान को प्रकट होने के लिए के माता पिता की जरूरत नहीं होती, नरसिंहदेव के कोई थे माता पिता नहीं थे ना, कौन बनेगा नरसिंहदेव माता। तो नरसिंहदेव की कोई माता पिता तो थे नहीं, उनको तो कोई जरूरत नहीं है माता पिता की, लेकिन अब वो नरलीला कर रहे हैं ना, तो मनुष्य समाज में तो चाहिए ना कोई माता पिता हमें, तो इसलिए कोई तो माता पिता चाहिए तो वो उनको चुन लेते हैं कि चलो आप चाहते हो कि मैं आपका पुत्र बनूं तो चलो आप बन जाओ। ये भी भगवान की योजना कि वो भी इनके लीला भगवान की लीला में शामिल हो जाए। तो इसलिए ऐसे प्रश्नी और सुतपा ने तपस्या करके फिर प्रार्थना कर ली तो उनकी इच्छा पूरी हो गई। अत्रि मुनि ने ऐसे प्रार्थना की थी कि मैं आप जैसा पुत्र चाहता हूं, इसलिए वो शुद्ध भक्त नहीं माने जाते, हालांकि उनके पुत्र बने दत्तात्रेय जो कि विष्णु के अवतार हैं, उनके तीन पुत्र हुए, फिर सोम चंद्र के अवतार हुए दुर्वासा, और आगे उनके और एक पुत्र हुए सोम शिव के पुत्र, शिव जी के पुत्र हुए अवतार हुए दुर्वासा, और ब्रह्मा जी के हुए सोम, विष्णु के हुए दत्तात्रेय। फिर भी प्रभुपाद जी समझाते हैं कि अत्रि मुनि जो है वो शुद्ध भक्त नहीं माने जा सकते, क्योंकि उनकी इच्छा एक पुत्र की थी, वो भगवान जैसा पुत्र चाहते थे, परंतु प्रश्नियों सुतपा भगवान को अपना पुत्र चाहते थे, भगवान जैसा पुत्र नहीं चाहिए था उनको, उन्होंने कहा कि आप ही हमारे पुत्र बनो, आप जैसा हमें नहीं चाहिए, स्वयं आप ही चाहिए। इसलिए सुतपार प्रश्न शुद्ध भक्त थे, परंतु अत्रि मुनि शुद्ध भक्त नहीं थे, मिश्र भक्त थे वो। ठीक है, हाँ एक और प्रश्न अंतिम। नहीं, वो जो प्रश्न ये है कि अनंत शेष के फणों के ऊपर ब्रह्मांड रहते हैं, लेकिन ऐसे भी बताया जाता है कि सारे जो ग्रह हैं वो कमल में रहते हैं जो ब्रह्मा जी से निकलते हैं, वैसे ये सारे ग्रह जो है लोक हैं 14 भुवन, ये तो एक ब्रह्मांड के भीतर हैं, और हर एक ब्रह्मांड जो है फिर वो शेष के फण पे ऊपर रहता है, और ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं, और हर एक ब्रह्मांड के भीतर ये 14 भुवन हैं, हर एक के अंदर ब्रह्मा जी हैं इत्यादि, और ये सब अनंत शेष के फणों के ऊपर विराजमान है, निवास करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री बलराम जयंती महोत्सव की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। गौर प्रेमानंदे।